ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। ईडी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सहित 14 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा में किया हंगामा। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट का हुआ आयोजन। कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा के निवेश का किया ऐलान। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। और गरियाबंद जिले में आज 3 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापामार कार्रवाई की। आज सुबह ईडी की टीम उनके पदुम नगर भिलाई स्थित घर पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच कर रही है। खबर है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के यहां भी छापा मारा गया है। इसके अलावा ईडी ने भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, दुर्ग लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी राजेन्द्र साहू, बिल्डर अजय चौहान, मनोज राजपूत, ट्रांसपोर्टर संदीप सिंह, अभिषेक ठाकुर के ठिकानों सहित 14 स्थानों पर दबिश दी है। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बीते 5 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। ईडी भी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो अपना काम कर रही है, इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है।
की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं, तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनावासी हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षी विधायक गर्भगृह तक पहुंच गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया। सदन में हुए निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बीच मंत्री रामविचार नेताम और वित्त मंत्री ओपी चौधरी विपक्षी विधायक को मनाने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। ईडी के छापे के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। सदन में आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को उठाया। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं विपक्षी अनुपस्थिति में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल के विभागों की अनुदान मांगों को सदन में पारित कर दिया गया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान 20 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा तथा मतदान होगा। वहीं वित्तीय कामकाज के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू हुआ, जो 13 फरवरी तक चला। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इसमें कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की शुरुआत होगी। वहीं थर्मल पावर क्षेत्र में अडानी पावर 66,720 करोड़ रुपए खर्च कर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। इसके साथ ही जिंदल पावर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 5,300 करोड़ रुपए लगाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में ये निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।
आज विभिन्न सेक्टर में एमओयू हुआ है, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, ग्रीन एनर्जी सब तरफ हुआ है, तो सभी ऐसे जिनके साथ एमओयू हुआ है सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और यहाँ पर पंप स्टोरेज पावर इतनी बड़ी मुंबई से जैसे भौगोलिक स्थिति है तो उसमें भी एमओयू हुआ है, तो कुल मिला के अच्छा संकेत हमारे प्रदेश के लिए है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी क्लर्क, ट्रेड्समैन, महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर, धर्मगुरू, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों की भर्ती की जाएगी। इच्छुक युवा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च से 10 अप्रैल तक कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए युवा सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर 07712965212 और 07712965214 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मार्च को बिलासपुर जिले का दौरा प्रस्तावित है। इसे लेकर बिलासपुर में प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिल्हा के ग्राम मोहभट्टा में प्रधानमंत्री की विशाल आम सभा होगी। इस सिलसिले में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मैदान के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए चिन्हांकित स्थलों का अवलोकन किया। उन्होंने हेलीपैड, मंच, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रदर्शनी स्थल, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था आदि के संबंध में अधिकारियों से जरूरी चर्चा की। गरियाबंद जिले में आज 3 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। मिली जानकारी के अनुसार ये माओवादी गरियाबंद के उदंती, सीता नदी और नवापड़ा क्षेत्र में सक्रिय थे। एसडीके एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर दिलीप उर्फ संतू ने ऑटोमेटिक हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया, साथ ही 2 महिला माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा और सीआरपीएफ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। इन तीनों पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रायपुर जिले के चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में आज नवनियुक्त उपनिरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक खुशवंत साहेब सहित पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिंह ठाकुर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। गौरतलब है कि 8 मार्च को कोरबा नगर निगम में सभापति पद के लिए चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भाजपा ने हितानंद अग्रवाल को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, लेकिन भाजपा नेता नूतन सिंह ठाकुर ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर ली। भाजपा ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए नूतन सिंह ठाकुर को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा से लगे गोदरमाना में आज एक पटाखा दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे और 1 महिला भी शामिल हैं। और अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के परेड ग्राउंड में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 10 मार्च तक दुर्ग के विभिन्न स्थलों पर किया गया, जिसमें दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों के करीब 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सहित 14 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा में किया हंगामा। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट का हुआ आयोजन। कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का किया ऐलान। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। और गरियाबंद जिले में आज 3 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।